ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बहुत अच्छा लेख है। मनुष्य को बहुत ही श्रेष्ठ आदर्श को सामने रखकर चलना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे आदर्श को लक्ष्य में रखकर वक्ता को ऐसा बनना चाहिए कि उससे कोई भी आदमी बिना भय के अपनी बात पूछ सके। बात पूछने वाले में किसी प्रकार का भय, संकोच, रुकावट नहीं हो, और वक्ता हो, बतलाने वाला हो, बड़े प्रेम से बतलाए। किसी बात का ज्ञान नहीं हो तो कह दे भाई मुझे ज्ञान नहीं है। पूछने वाला यदि कुतर्क करता है तो भी सरलता से जवाब देवे, सत्य कहे, प्रिय बोले, क्योंकि वक्ता की क्रियाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वक्ता लोग आजकल असावधान ज्यादा रहते हैं। वक्ता हंसता हुआ रहे, मुस्कुराता हुआ रहे, प्रसन्नता से रहे, शांति की बात कहे, शांतिपूर्वक रहे, हित की बात कहे, उद्वेग से नहीं कहे, मन में अहंकार न आए, अभिमान न आए, अग्नि की तरह बनने वाले की बात प्यारी लगती है। वक्ता हो और अपने को वो अज्ञ मानता हो, अज्ञ माने मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा होकर के जो बात बोलता है उसकी बात बहुत प्यारी लगती है। पूछने वाले को खूब मौका देवे, वो ऊट पटांग भी पूछे तो उद्वेग नहीं आए, तब उसकी अच्छी बात का असर पड़ता है। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संसार में नास्तिक, पापी, नीच कई प्रकार के प्राणी मिलेंगे। मनुष्य को, साधक को उसका संग नहीं करना चाहिए। क्या करें, कभी संग हो जाए तो उपेक्षा करनी चाहिए। उन लोगों की अपेक्षा तो भोगी मनुष्य का संग अच्छा है। पापी और नीच और नास्तिक तीनों की अपेक्षा भोगी का संग अच्छा है। भोगी मनुष्यों में भी जो श्रद्धा पूर्वक सकाम भाव से काम करने वाले अर्थात यज्ञ आदि करने वाले वो श्रेष्ठ हैं। अर्थात श्रद्धा से सकाम भाव से कर्म करने वाला उत्तम है। सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति करने वाला अच्छा है। भगवान के सकाम भक्त से आर्त भक्त श्रेष्ठ है। आर्त माने पीड़ित, दुखी, जैसे हाथी दुखी होकर के पुकार रहा था ऐसे दुखी होकर पुकारने वाला अच्छा है। और दुखी से भी जिज्ञासु श्रेष्ठ होता है। जिज्ञासु माने ज्ञान की इच्छा रखने वाला है। जिज्ञासुओं में भी निष्काम भाव से उपासना करने वाला श्रेष्ठ है। वालों में सिद्ध श्रेष्ठ है। सिद्धों में भी भगवान के घर से जिनको दूसरे के उद्धार का अधिकार मिला है वो श्रेष्ठ है। उनसे भी कारक पुरुष श्रेष्ठ है और उनसे भगवान श्रेष्ठ है। यह एक आपको श्रृंखला बताइए। गीता में कहा गया है कि परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को जो मेरे प्यारों में भक्ता है, कहता है, भक्तों में कहता है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। ये बात बलवान है। गीता को हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है। गीता की चर्चा चले तो मुख्यता से गीता को ही सामने रखना चाहिए। अब मैं आपको एक मुख्य बात और विशेषता से बताता हूं। किसी भी आदमी पर संदेह नहीं रखना चाहिए। अब ये बहुत अच्छी बात बताते हैं। गृहस्थ में कई लोग आपस में रहते हैं तो किसी की भी नियत के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए कि उसकी नियत खराब है। ऐसा करने से न अपना लाभ है न दूसरे का लाभ है। यदि वो बुरा है भी, बुराई दिखती भी है, तो भी उसको अच्छा बनाने का भाव रखना चाहिए और उसके सामने या पीठ पीछे उसका दोष सिद्ध नहीं करना चाहिए, उसके दोष को प्रसिद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूसरे का जो दोष होता है वो वास्तव में दूसरे में है कि नहीं, आपकी कल्पना में दोष आ गया और जब आपने उसको वर्णन करना चालू कर दिया तो वो आपके अंदर बैठ गया। आपको तो दूसरे का दोष कहने में सुख मिलता है पर वो आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया, बड़ा नुकसान होगा। किसी आदमी को बुरा बताना अपने आप के बुरा होने की संभावना बढ़ती है और उसका भी बुरा होता है। बुराई में मदद मिलती है, फिर पतन होने का डर रहता है। किसी आदमी पर हम विश्वास नहीं करते हो, वो अविश्वास के लायक हो तो, कि अविश्वास के लायक व्यक्ति हो तब भी उसका अविश्वास सिद्ध नहीं करना चाहिए, उसे विश्वासी बनाना चाहिए। उसके दिल में ये बात आनी चाहिए कि ये मेरे पर विश्वास करते हैं तो मैं भी इनके साथ विश्वास का ही काम करूं, ऐसा उसके दिल में आना चाहिए। यदि वह समझ लेगा कि ये मुझे अविश्वासी समझते हैं तो फिर उसका विश्वासी बनना कठिन हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। किसी भी आदमी में कोई दोष हो, उसमें सुधार करना हो, तो जहां तक उसको यह नहीं कहना चाहिए तुम्हारे में दोष है, अब तुम सुधार करो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। दोष तो कहना ही नहीं चाहिए। दोष तो तभी बताए जब वो स्वयं पूछे कि जी आपको मेरे में कोई दोष दिखे तो बता दिया करो, तब थोड़ा सा दोष बताना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, कि भाई आप में तो सुख है, आप ये थोड़ा सा सुधार करो। थोड़े थोड़े से चालू करते करते फिर बड़े दोष में हाथ डालना चाहिए। यदि वो थोड़े से दोष को भी सुधारता नहीं है और उसको बुरा लगता है तो बड़े दोष को बता देंगे तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। वो स्वयं पूछे तो बताए, सलाह ले तो बताए और सत्यता पूर्वक बताए। बिना पूछे किसी का दोष बताना तो उसे गिराने के समान है। जैसे कोई आदमी कुएं के पास खड़ा हो और हम उसको धक्का दे दें तो वो तो कुएं में जा गिरेगा, ऐसे बिना पूछे दोष बताना कुएं में फेंकने के समान हो गया। क्योंकि कोई भी आदमी अपना दोष अपने कानों से सुनना नहीं चाहता है, उसकी आदत है। हमको तो भाई मानव शरीर मिला है, सब प्राणियों के हित में हमारा समय लगना चाहिए, भावना रहनी चाहिए। अपने हित में तो सभी लगे रहते हैं, दूसरे के हित में रहना मूल्यवान है। जिस तरह परमात्मा का भजन मूल्यवान है, इसी तरह दूसरे का हित करना ये मामूली मूल्यवान नहीं है। सारी बात इसी से निकलती है। अहिंसा है, दया है, क्षमा है, ये सब हित की भावना से अपने आप अंदर प्रकट होगी। जो आदमी दूसरे का हित चाहता है उसका लक्षण बताते हैं, ध्यान से सुनो। वो कठोर नहीं बोलता, बहुत बढ़िया। एक तो कठोर नहीं बोलना चाहिए। कोई यदि कितना भी नुकसान करे, दांत फटकार के नहीं कहना चाहिए, कठोर नहीं कहना चाहिए। हृदय में खूब दया रहनी चाहिए। अपराध को दंड देने का भाव मन में आना ही नहीं चाहिए। दूसरे के हित में लगेंगे, आप में ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगे। हमसे तो पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि धर्म का वास्तविक तत्व इसी में भरा पड़ा है कि दूसरे का हित हो जाए, बस। गीता में ये बात दो जगह आई है, सर्वभूत हिते रता, ज्ञान में भी और भक्ति में भी। ये इतना विलक्षण मार्ग है कि इससे परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। आजकल लोग भजन साधन को मूल्यवान मानते हैं, लेकिन सेवा वगैरह को मूल्यवान नहीं मानते। ये समझदारी नहीं है। सबके प्रति हित का भाव रखने वाले दो ही मिलेंगे, भगवान और महापुरुष। कहीं उच्च कोटि के साधक में भी बात मिल सकती है, कहीं नहीं भी मिले। जैसे आदमी अपने स्वार्थ में तन्मय है, जरा सी भी स्वार्थ की हानि वो सह नहीं सकता है, इसी प्रकार जिससे दूसरे की हानि नहीं देखी जा सके वो श्रेष्ठ है, वो साधुता है। प्राणी मात्र का हित करना यही साधु का लक्षण है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सन्यासी को सारे भूतों को अभय देना चाहिए। जब ये सन्यासी होते हैं, दंडी सन्यासी, दंड धारण करने वाले, उनको ये मंत्र दिया जाता है कि मुझसे सब अभय प्राप्त करें, मुझसे कोई डरे नहीं। तो सन्यासी को सारे भूतों को अभय देना चाहिए। कितनी ऊंची बात है। ये पाठ यदि मनुष्य पढ़ ले तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई देरी नहीं है। आत्मउपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत है। जो सब प्राणियों में सम को देखता है, दुख सुख में भी सम रहता है, वह योगियों में परम योगी होता है। अपने हित में मनुष्य जैसे लगा रहता है, उसी तरह दूसरे के हित में भी लगा रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, ये मुझे बहुत ऊंची बात लगती है। महात्मा के लक्षणों में भी गीता में कहा है सर्वभूत हिते रता। यदि दूसरे का हित नहीं कर सकते तो वो साधक ही क्या है, साधु ही क्या है। अपने स्वार्थ में तो कुत्ता भी लगा रहता है। ईश्वर में, इसमें ईश्वर की स्मृति, ईश्वर में प्रेम है, ध्यान है, ये एक एक चीज परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। जिसका हृदय उदार होता है और जो दूसरे के हित में लगता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति में बहुत ज्यादा देरी नहीं लग सकती। एक और दूसरे का हित है और दूसरी ओर अपना भजन ध्यान का समय है, तो क्या करना चाहिए कि भजन ध्यान का समय छोड़ करके, भजन ध्यान छोड़ के दूसरे का हित करना चाहिए। ऐसा करने वाला घाटे में नहीं रहता है। यदि वह घाटे में है तो दान पुण्य करने वाले भी घाटे में ही हैं। माने दान पुण्य से भी बड़ा काम है ये, दूसरे का हित करना। घर में कोई बीमार है, उस समय आपके पाठ पूजा का समय है और उसी समय उसकी सेवा का समय है, तो पाठ पूजा को छोड़ के उसकी सेवा पहले करो, उसके कपड़े धो, उसकी साफ सफाई करो, उसको दवाई दो। उनका जब सब काम पूरा हो जाए तब आप पाठ पूजा करो। वो पाठ पूजा आपकी भगवान तक पहुंचेगी। वो सेवा के लिए तरसता है और आप पाठ पूजा के नाम पर बैठे हुए हो तो वो पाठ पूजा भगवान को प्यारी नहीं लगती है। अपने इस शरीर के द्वारा किसी भी जीव का कल्याण हो गया तो अपना जीवन सफल हो गया, इधर दृष्टि रखनी चाहिए। ज्ञान योग की दृष्टि से देखो, अरे उसकी आत्मा और अपनी आत्मा दो थोड़े ही एक ही तो है। जैसे ये दोनों ही हाथ अपने हैं, दोनों आंख अपनी है, दोनों पैर अपने हैं, ऐसे ही आत्माओं में कोई फर्क थोड़ा ही होता है। भक्ति मार्ग से देखें, अरे भगवान ही इस रूप में हमसे सेवा लेने के लिए आए हैं, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। भगवान समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान घोषणा करे, ध्यान से सुनना हो, भगवान घोषणा करे कि भाई आप दो आदमी हो, मैं तो किसी एक को दर्शन दूंगा, तुम दोनों निर्णय करके बताओ कि किसको निर्णय किसको दर्शन देऊं। तो कहो महाराज इसको दर्शन दो, मुझे रहने दो। कोई सोचेगा कि फिर हम तो वंचित रह गए और उसको दर्शन दे दिए भगवान ने, हम तो यूं ही रह गए, भगवान के दर्शन तो हम खुद चाहे कि नहीं नहीं, आप दूसरे के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करोगे तो इससे भगवान के हृदय पर बहुत विलक्षण असर पड़ेगा कि देखो मेरे दर्शन के लिए इसने अपने लिए इच्छा नहीं की, दूसरे के लिए की, वो परम लाभ से वंचित नहीं रह सकता। जब भगवान के दर्शन के लिए हम दूसरे को कहते हैं तो फिर उसके बाद और चीजों के त्याग में तो बात ही क्या है। गंगा पार होना है, भीड़ लगी हुई है, नौका खड़ी है, दूसरों को मौका दो। हम मौका नहीं देंगे तो जीवन में त्याग कहां मिलेगा। कहते हमारा सत्संग का समय हो रहा है, हम पहले जाकर के सत्संग रहे, हमारा सत्संग बाकी रह जाएगा। कि जो बात आपको सत्संग में त्याग के द्वारा नौका के किनारे मिलेगी वो सत्संग में नहीं मिलेगी। सत्संग में चले भी जाओगे तो आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा, और यदि नौका पार करने में आपने दूसरों के लिए त्याग किया तो सत्संग की बात आपके मन में पैदा हो जाएगी। हम कहें कि ईश्वर पर भरोसा रखो, फिर यह तो कहने की बात होगी, फिर त्याग कहां किया, भगवान पर भरोसा कहां रखा। मनुष्य यहां त्याग करने के लिए आया है कि स्वार्थ पूर्ति के लिए आया है। मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें उसके कार्यों में पवित्रता आए, और जहां स्वार्थ त्याग की बात हो तो वहां कभी चूकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। सब स्वार्थ की पूर्ति में लगे, ऐसे मौके पर स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। स्वार्थ के तो हर समय लात मारता ही रहे, कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध न हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। मेरा स्वार्थ सिद्ध मत करना प्रभु, जनता का स्वार्थ सिद्ध करना, इस सिद्धांत को पकड़े रखना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।